आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। भारत की कुल बरामदात माली साल 2024 में पिछले साल के रिकॉर्ड से ज्यादा 776.68 बिलियन अमरीकी डॉलर्स हो गई है। लोकसभा इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम में शिद्दत आ गई है। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने बिहार में रैली से खिताब किया। बीजेपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। जम्मू कश्मीर में गांदाबल में झेलम नदी में एक कश्ती पलट जाने के हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए और इसराइल के वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू ने जवाबी हमले के पेश नजर जंगी काबिना की एक मीटिंग की। अब खबरें तफसील से। भारत की कुल बरामदात 2023-24 के माली साल में 776.68 बिलियन डॉलर तक होने के इम्कानात हैं। यह पिछले साल सबसे ज्यादा रिकॉर्ड से आगे निकल जाएगी। कॉमर्स और सनत की वजारत ने एक बयान में बताया कि 2022-23 के माली साल में भारत की कुल बरामदात 776.40 बिलियन डॉलर थी। वजारत ने मजीद बताया कि 2023-24 के माली साल में कुल दरामदात 854.80 बिलियन डॉलर होने की तवक्को है, जो पिछले साल के मुकाबले में 4.81% कम है। उसने मजीद बताया कि कुल तिजारती खसारे में 35.77% की बेहतरी होगी। तिजारती खसारा 2022-23 के माली साल में 121.62 बिलियन डॉलर से घटकर 2023-24 में 78.12 बिलियन डॉलर रहने की तवक्को है। वजीर आजम और बीजेपी के आला रहनुमा नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और उसके इत्तेहादी अपने सियासी मफादात के लिए आईन को एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के शहर गया के गांधी मैदान में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां लोगों को गुमराह करने की गरज से यह गलत बयानी कर रही हैं कि बीजेपी आईन को बदल देगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि कोई भी आईन को तब्दील नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुल्क में आईन का कौमी दिन मनाकर लोगों में आईन का सच्चा जज्बा पैदा करने की कोशिश की है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि मुल्क के अवाम अपोजिशन के नापाक अजाइम को इंतखाबात में वोट के जरिए शिकस्त देंगे। जनाब मोदी ने कांग्रेस और उसके हलीफों पर इल्जाम लगाया कि वो सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं, उसकी तोहीन कर रहे हैं। बिहार की खराब हालत के लिए आरजेडी की साबका हुकूमत की तनकीद करते हुए बीजेपी के सीनियर रहनुमा ने कहा कि आरजेडी जंगलराज और बदउनवानी का चेहरा है। बीजेपी ने आने वाले लोकसभा इंतखाबात, ओडिशा असेंबली इंतखाबात और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश असेंबली के जिमनी चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। बीजेपी ने ओडिशा असेंबली इंतखाबात के लिए 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। दिलीप राय को राउरकेला से टिकट दिया गया है, जबकि संजली मुर्मू बांगरीपोसी से, नरसिंह बत्रा झारीगाम से और अमरेंद्र दास जगत सिंहपुर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल में लोकसभा सीटों के लिए 7 उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी की है। महाराष्ट्र में छत्रपति उदयनराजे भोसले को सतारा लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है, जबकि पंजाब में परमपाल कौर सिद्धू को भटिंडा से टिकट दिया गया है और अनिता सोम प्रकाश को होशियारपुर लोकसभा सीट पर उतारा गया है। ठाकुर विश्वदीप सिंह को उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद और शशांक मणि त्रिपाठी को देवरिया से टिकट दिया गया है। अभिजीत दास बॉबी को मगरबी बंगाल में डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर खड़ा किया गया है। इस दौरान बीजेपी ने तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में जिमनी इंतखाबात के लिए 5 उम्मीदवारों की एक फहरिस्त भी जारी की है। डॉ टीएन वामशाह तिलक को तेलंगाना में सिकंदराबाद कैंट से, जबकि ओपी श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश में लखनऊ ईस्ट से टिकट दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए मजीद 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीएसपी के उम्मीदवार अथर जमाल लारी वजीर आजम और बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से खड़े हो रहे हैं। उधर पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा हलके से अपना उम्मीदवार बदल दिया है और वहां से शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए पंजाब में 4 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। जगदीश सिंह काका बरार फिरोजपुर से, जबकि अमन शेर सिंह गुरदासपुर पार्लिमानी हलके से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने पवन कुमार तीनू को जालंधर और अशोक प्रसार पप्पी को लुधियाना पार्लिमानी हलके से टिकट दिया है। आसाम में अरुणाचल प्रदेश की सरहद से मुत्तसिल मार्घरीता के नामदांग इलाके में नामालूम मुसल्ला अफराद ने आसाम राइफल्स की एक गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में आसाम राइफल्स के 2 एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। शुबा है कि इस हमले में एनएससीएन के मिलिटेंट्स का हाथ है। आसाम राइफल्स की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन किसी के जख्मी या हलाक होने के बारे में अभी कुछ मालूम नहीं हो सका है। सीनियर पुलिस एहलकार जा वाक पर पहुंच गए हैं। इत्तलात और नशरियात के मरकजी सेक्रेटरी संजय जाजू आज भोपाल में हैं। जनाब जाजू आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीआईबी और सीबीसी के अफसरान के साथ आज भोपाल में एक मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में गर्मी की लहर जैसे मौजूदात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कश्मीर वादी में श्रीनगर के मुजफ्फरात में गांदाबल में झेलम नदी में आज सुबह कश्ती के पलट जाने के हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। कश्ती में इलाके के छोटे बच्चे सवार थे। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर बिलाल मुहीउद्दीन के मुताबिक इस हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि बाकी 3 का इलाज श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में चल रहा है। जिला इंतजामिया ने फौरी तौर पर बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, जिसके नतीजे में कुछ अफराद को बचा लिया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। बांग्लादेश में कम से कम 13 अफराद हलाक और कई दीगर उस वक्त जख्मी हो गए, जब आज सुबह फरीदकोट जिले में ढाका खुलना शाहरा पर एक बस और एक मालबरदार वैन के दरमियान आमने सामने टक्कर हो गई। हलाक होने वाले ज्यादातर पिकअप वैन के मुसाफिर हैं। इस हादसे की तस्दीक करते हुए फरीदकोट में पुलिस सुपरिंटेंडेंट मोहम्मद मुर्शिद आलम ने बताया कि 11 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने करीब के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसराइल के वजीर आजम बेन्यामीन नेतन्याहू ने ईरान के हमले का जवाब देने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल के लिए 24 घंटे से भी कम वक्त में कल दूसरी मरतबा जंगी काबिना की मीटिंग बुलाई। हुकूमत ने अब तक किसी भी फैसले का ऐलान नहीं किया है। ईरान ने कहा था कि उसकी तरफ से मामला खत्म हो चुका है, जबकि इसराइल की फौज के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए इसराइली दिफाई फोर्सेज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हालेवी ने कहा कि इसराइल पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान के एक आला एहलकार अबुल फजल अमूई ने कहा कि इसराइल के हमले की सूरत में सभी मुतवक्के हालात के तनाजुर में ईरान ने जामे लाए अमल तैयार कर रखा है। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल के हमलों की सूरत में ईरान वो हथियार इस्तेमाल करेगा जो उसने अभी तक नहीं किए हैं। ईरान का कहना है कि उसकी कार्रवाई शाम में उसके कौंसल खाने पर 1 अप्रैल को हुए हमले के जवाब में थी, जिसमें ईरानी फौज के आला कमांडर मारे गए थे। इसराइल की फौज ने कहा है कि इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया था। उसने बताया कि अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और दीगर मुल्कों की मदद से उसकी फौज ने तकरीबन सभी को निशाने पर गिरने से पहले मार गिराया। किसी के मारे जाने की खबर नहीं है और इसराइल ने कहा है कि बहुत कम नुकसान हुआ है। आलमी लीडरों ने मगरबी एशिया में किसी बड़ी कशीदगी से बचने के लिए सब्र तहम्मुल से काम लेने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 25 रन से हरा दिया। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत की कुल बरामदात माली साल 2024 में पिछले साल के रिकॉर्ड से ज्यादा 776.68 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई है। लोकसभा इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम में शिद्दत आ गई है। बीजेपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। जम्मू कश्मीर में गांदाबल में झेलम नदी में एक कश्ती पलट जाने के हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। और इसराइल के वजीर आजम बेन्यामीन नेतन्याहू ने जवाबी हमले के पेश नजर जंगी काबिना की एक मीटिंग की है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।